एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार। अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ही आप कह सकते हैं काफी दिलचस्प है, प्ले नाइस बट विन।
हाँ, प्ले नाइस बट विन। और ये शब्द किसके हैं?
टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम माइकल डेल के।
बिल्कुल, और शीर्षक ही मतलब सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा व्यवहार करो पर जीतो भी,
है ना? पहली बार में लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब अच्छा बनके भी जीतना, खासकर आज के टाइम में।
हाँ, जहाँ इतना कंपटीशन है, गला काट जिसे कहते हैं, अक्सर तो लगता है कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा चालाक या शायद कहें तेज बनना ही पड़ता है।
सही बात है, और यही यही सवाल इस किताब के बिल्कुल केंद्र में है। क्या कामयाबी के लिए अपने उसूलों से, अपने मूल्यों से समझौता करना ही पड़ेगा?
और माइकल डेल, जिन्होंने मतलब अपने कॉलेज के कमरे से शुरुआत करके दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक खड़ी कर दी,
हाँ, डेल टेक्नोलॉजीज।
वो कहते हैं नहीं, जरूरी नहीं, बल्कि उनका तो ये मानना है कि अच्छा व्यवहार करना और जीतना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और शायद लंबे समय तक टिकने का यही रास्ता है।
तो थोड़ी बात लेखक की करते हैं पहले। माइकल डेल ये कोई मतलब थ्योरी देने वाले प्रोफेसर टाइप नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये वो आदमी है जिन्होंने खुद करके दिखाया है 19 साल की उम्र में। सोचे 1984 में,
हाँ, सिर्फ $1,000 से
सिर्फ $1,000 अपने हॉस्टल के कमरे से डेल कंप्यूटर शुरू किया।
कमाल है। और कमाल ये भी है कि उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बेचने का पूरा तरीका ही पलट दिया था।
बिल्कुल, उस टाइम क्या होता था, कंप्यूटर बनता था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, फिर रिटेलर के पास, और तब जाकर ग्राहक तक। कितनी लंबी चेन थी।
हाँ, और महंगा भी हो जाता था। डेल ने कहा नहीं, सीधा ग्राहक को बेचो, उनकी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर बनाओ और बेचो।
डायरेक्ट मॉडल, नतीजा एक तो कीमत कम हुई,
और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी था, कंपनी का ग्राहक से सीधा कनेक्शन बन गया, फीडबैक सीधा आने लगा।
सही, और देखते देखते वो फॉर्च्यून 500 कंपनी के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए थे।
ये तो अविश्वसनीय है।
और कहानी यहीं रुकी नहीं, कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक टाइम तो ऐसा आया कि कंपनी को बचाने के लिए उन्हें उसे पब्लिक मार्केट से हटाना पड़ा, प्राइवेट कर दिया।
हाँ, वो भी बहुत बड़ा फैसला था, बहुत जोखिम भरा।
बिल्कुल, और फिर ईएमसी जैसी एक और बड़ी कंपनी को खरीदा और डेल को पूरी तरह से बदल दिया। मतलब लगभग 4 दशक का तजुर्बा है उनके पास, सफलता, संकट, वापसी सब देखा है।
और एक चीज जो मुझे बहुत खास लगती है, वो है उनकी अपनी छवि। इतनी जबरदस्त सफलता के बाद भी वो एक नैतिक लीडर माने जाते हैं,
हाँ ये बात है,
जो अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टनर्स के साथ सम्मान से पेश आते हैं। टेक की दुनिया में ये थोड़ा कम देखने को मिलता है ना, जहाँ अक्सर होता है कि बस जीतो, कैसे भी जीतो।
बिल्कुल। डेल का नजरिया इस मामले में थोड़ा अलग है, ताजगी भरा लगता है।
तो ये किताब प्ले नाइस बट विन असल में है क्या? क्या ये सिर्फ उनकी कहानी है?
नहीं, सिर्फ कहानी नहीं है, हाँ इसमें उनकी पूरी यात्रा का जिक्र है, और वो भी काफी रोमांचक ढंग से। लेकिन ये एक तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी पर भी है और लीडरशिप पर एक मजबूत बयान भी देती है।
तो इसका निचोड़ क्या है, मतलब मेन आइडिया?
मेन आइडिया ये है कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बेरहम या अनैतिक होने की जरूरत नहीं है। डेल का मानना है कि आप ईमानदारी, सम्मान, सहयोग यानी प्ले नाइस,
हाँ,
और साथ ही जीतने की जबरदस्त इच्छा, कॉम्पिटिटिव रहना, लगातार कुछ नया करना यानी विन,
अच्छा,
ये दोनों चीजें एक साथ रख सकते हैं।
बिल्कुल।
बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि सही मायने में टिकाऊ जीत के लिए अच्छा व्यवहार करना जरूरी है।
वाह, तो ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस चलाने की बात है।
बिल्कुल, किताब हमें डेल कंपनी के शुरुआती दिनों के जोश से लेकर 90s की वो तूफानी ग्रोथ,
हाँ, रॉकेट शिप वाला दौर,
हाँ फिर वो मुश्किल दौर, फिर कंपनी को प्राइवेट करने की वो पूरी लड़ाई, और आखिर में ईएमसी के साथ वो बड़ा बदलाव, ये पूरी कहानी बताती है। और हर मोड़ पर डेल बताते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, क्यों वो फैसला लिया।
तो चलिए कहानी के कुछ खास मोड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्ले नाइस बट विन वाली बात कैसे दिखती है। शुरुआत करते हैं उस आइडिया से जिसने सब बदला, डायरेक्ट मॉडल।
हाँ, जैसा हमने कहा, डेल ने यह पहचाना कि कंप्यूटर सप्लाई चेन में बहुत दिक्कतें थीं, अक्षमता थी, निर्माता से वितरक, फिर रिटेलर, फिर ग्राहक।
महंगा भी और कंपनी ग्राहक से दूर भी।
बिल्कुल, तो डेल का आइडिया एकदम क्रांतिकारी था उस समय, सीधा ग्राहक को बेचो, और वो भी कस्टम बिल्ट, जैसा चाहिए वैसा कंप्यूटर।
ये सिर्फ सस्ता बेचना नहीं था, ये तो आईबीएम, कॉम्पैक जैसी बड़ी कंपनियों के पूरे सिस्टम को चुनौती देना था।
सही कहा, उन्होंने ग्राहक और बनाने वाले के बीच की दीवार हटा दी।
और इसके फायदे, दो बड़े फायदे हुए।
एक तो कीमत कम हुई, जाहिर है।
हाँ, और दूसरा जो शायद ज्यादा गहरा असर डालने वाला था, कंपनी का ग्राहक से सीधा जुड़ाव। उनकी जरूरतें क्या हैं, उन्हें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, सब सीधा पता चलने लगा।
यहीं से डेल की फिलॉसफी की नींव पड़ी, कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी ग्राहक पर फोकस, और एफिशिएंसी यानी काम को बेहतर ढंग से करना।
ये सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं था, ये ग्राहक को सबसे ऊपर रखने की सोच थी।
फिर आया 90 का दशक, वो रॉकेट शिप वाला दौर। कंपनी इतनी तेजी से बढ़ेगी यकीन करना मुश्किल था।
इसका राज क्या था, मतलब इतनी तेज ग्रोथ का?
एक बड़ा राज था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उनकी महारत, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग।
अच्छा, मतलब सामान तभी मंगाना जब जरूरत हो।
हाँ, पार्ट्स तभी आते जब ऑर्डर आता और कंप्यूटर असेंबल होता, तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक लगभग शून्य रहता था। सोचे कितना पैसा बचता होगा।
कमाल है।
और उससे भी कमाल की चीज थी उनकी नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल। सुनने में टेक्निकल लगता है पर है बड़ा आसान।
बताइए।
मतलब ये कि डेल को ग्राहक से पैसा पहले मिल जाता था,
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गया।
हाँ, और वो अपने सप्लायर्स को जैसे इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट करते थे कुछ हफ्तों बाद।
अच्छा, तो बीच का जो पैसा था
वो कंपनी के पास रहता था और उसी पैसे से कंपनी अपनी ग्रोथ को फाइनेंस कर रही थी, ज्यादा लोन लिए बिना। ये इतना शानदार था कि बिजनेस स्कूलों में केस स्टडी बन गया।
वाह, उस दौर का फोकस था स्केल करना और ऑपरेशनल एक्सीलेंस, मतलब काम को बड़े पैमाने पर और बेहतरीन तरीके से करना।
लेकिन कहते हैं ना, हर तेजी के साथ कुछ खतरे भी आते हैं। 2000 के दशक में यही हुआ। कंपनी लागत कम करने पर, एफिशिएंसी पर इतना ज्यादा फोकस हो गई
कि ग्राहक कहीं पीछे छूट गया।
हाँ, और इनोवेशन भी, बाजार बदल रहा था, लैपटॉप ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, लोग दुकानों से खरीदना पसंद करने लगे थे, और इन चीजों में डेल थोड़ा पीछे रह गया। कंपनी मुश्किल में आ गई।
और इसी समय माइकल डेल को वापस आना पड़ा सीईओ बनकर।
बिल्कुल, और ये एक बड़ा सबक था कि जो तरीका आपको सफल बनाता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा काम करे।
सही बात है, बाजार बदलता है तो आपको भी बदलना पड़ता है। यहीं लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, हालात को समझना, मुश्किल फैसले लेना, रास्ता बदलना।
और मुश्किल फैसलों की बात करें तो किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है 2013 का, जब उन्होंने कंपनी को प्राइवेट करने की वो लड़ाई लड़ी।
हाँ, ये क्यों किया उन्होंने?
उन्हें लगा कि पब्लिक कंपनी होने का जो दबाव होता है ना, हर 3 महीने में नतीजे दिखाओ, शेयर मार्केट को खुश रखो, जिसे वो 90-day शॉर्ट क्लॉक कहते हैं।
हाँ हाँ,
उस दबाव में रहकर वो कंपनी में वो बड़े जरूरी बदलाव नहीं कर पाएंगे जो लंबी अवधि के लिए चाहिए। उन्हें लॉन्ग टर्म सोचना था, निवेश करना था।
तो उन्होंने कंपनी को प्राइवेट करने का फैसला किया, LBO लेवरेज्ड बायआउट के जरिए, मतलब कर्ज लेकर शेयर वापस खरीदना।
हाँ,
लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। सामने थे काल इकान जैसे एक्टिविस्ट इन्वेस्टर, वो ज्यादा पैसा चाहते थे। भयंकर लड़ाई हुई।
डेल के लिखते हैं कि ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये कंपनी की आत्मा की, उसके भविष्य की लड़ाई थी।
बिल्कुल, यहीं पर वो प्ले नाइस बट विन वाली बात का असली इम्तिहान था। क्या वो अपने उसूलों पर टिके रहकर ये लड़ाई जीत सकते थे?
यहाँ साफ दिखता है कि कैसे लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म मुनाफे की सोच टकरा रही थी।
और यहीं डेल का वो कथन याद आता है जो किताब में है, कि आपके मूल्य तब तक वास्तव में आपके मूल्य नहीं है जब तक आपको उनके लिए कोई कीमत न चुकानी पड़े।
सही कहा,
कीमत तो चुकानी पड़ी होगी।
हाँ, पर वो अपने विजन पर टिके रहे और जीते।
प्राइवेट होने के बाद उन्हें वो आजादी मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी, कंपनी को बदलने की।
बिल्कुल, उन्होंने देखा कि भविष्य सिर्फ पीसी या लैपटॉप का नहीं है, भविष्य है एंटरप्राइज बिजनेस का। बड़ी कंपनियों के लिए क्लाउड, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर।
और इसी सोच के साथ उन्होंने 2016 में EMC कॉरपोरेशन को खरीदा।
हाँ, EMC जो डेटा स्टोरेज में लीडर थी और जिसकी VMware में बड़ी हिस्सेदारी थी। ये उस समय का टेक इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था, लगभग $67 बिलियन।
बापरे, इतना बड़ा सौदा।
हाँ, मकसद साफ था, डेल को सिर्फ एक डिवाइस कंपनी से बदलकर एक पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बनाना।
ये दिखाता है कि वो कितना आगे का सोच रहे थे, भविष्य के लिए कंपनी को तैयार कर रहे थे।
और इसमें भी वो प्लेन आइस वाला पहलू था। सोचिए, दो इतनी बड़ी अलग अलग कल्चर वाली कंपनियों को मिलाना।
हाँ, आसान नहीं होता होगा।
बिल्कुल, कर्मचारियों को साथ लेकर चलना, उनका भरोसा जीतना, यहाँ भी रिश्ते बनाना, विश्वास कायम रखना बहुत जरूरी था।
तो इन सब अनुभवों से अगर हम मुख्य संदेशों को देखें तो सबसे पहला शायद यही है, रिश्तों का महत्व, है ना?
बिल्कुल, डेल बार बार यही कहते हैं, ग्राहक हों, कर्मचारी हों, सप्लायर्स हों, उनके साथ गहरे भरोसेमंद रिश्ते बनाना सिर्फ अच्छा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, एक रणनीतिक फायदा।
जैसे उन्होंने इंटेल जैसे सप्लायर्स के साथ सिर्फ खरीदा बेची नहीं की, पार्टनरशिप बनाई।
हाँ, इससे उन्हें नई टेक्नोलॉजी जल्दी मिलती थी, बेहतर शर्तें मिलती थी। डेल का एक और कथन है इसी से जुड़ा हुआ कि लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि लोग आपको पसंद करें,
हाँ,
बल्कि ये है कि आप ऐसे रिश्ते बनाएं जिनसे आपसी मूल्य बढ़े और स्थायी सफलता मिले। मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पर अच्छा दिखना नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना जिनसे दोनों का फायदा हो।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है पारदर्शिता और विश्वास।
हाँ, मुश्किल समय में भी खुलकर बात करना, सच बताना, चाहे वो कर्मचारियों से हो या शेयर होल्डर्स से। इससे जो भरोसा बनता है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत कीमती है।
हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं ना, ऑफिस हो या परिवार, अगर ईमानदारी से बात हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं।
सही बात है। तीसरा, और डेल के लिए तो शायद सबसे जरूरी, ग्राहक ही सब कुछ है।
हाँ, उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर था।
बिल्कुल। डायरेक्ट मॉडल का मतलब ही था ग्राहक को समझना, उसे बेहतरीन सर्विस देना। उनका एक और विचार है कि ग्राहक के साथ सबसे करीबी रिश्ता ही जीत दिलाता है। ये उनके बिजनेस का जैसे मूल मंत्र रहा है।
चौथा है मूल्यों पर टिके रहकर फैसले लेना।
हाँ, ये बहुत अहम है। डेल दिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी अगर आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो लंबे समय में वो सही साबित होता है, भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान उठाना पड़े।
ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब दबाव आता है तो क्या हम शॉर्टकट लेते हैं या सही काम करने की हिम्मत दिखाते हैं।
और पांचवा, जो इन सबको एक तरह से समेटता है, जीतना और अच्छा व्यवहार करना, ये अलग अलग नहीं है।
हाँ, ये साथ साथ चलते हैं।
डेल की पूरी कहानी यही दिखाती है। आप पूरी ताकत से कॉम्पीट कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और फिर भी नैतिक बने रह सकते हैं, सम्मानजनक बने रह सकते हैं, और शायद टिकाऊ जीत का रास्ता ही यही है।
किताब में एक और बात है जो मुझे काफी अच्छी लगी। डेल कहते हैं कि जीत का मतलब प्रतिस्पर्धियों को हराना नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
इसका मतलब है ऐसा मूल्य बनाना जो पहले मौजूद नहीं था।
वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। मतलब बिजनेस सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, एक जंग नहीं है।
हाँ, ये कुछ नया बनाने, कुछ उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। आप ग्राहक के लिए, समाज के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। तो सवाल यह है कि हम इन सब बातों से अपनी जिंदगी में, अपने काम में क्या सीख सकते हैं?
हाँ, प्रैक्टिकल क्या है? पहली बात तो शायद यही कि हम अपने काम में, चाहे नौकरी हो या बिजनेस, सिर्फ मतलब वाले रिश्ते ना बनाएं।
हाँ, लेन देन वाले नहीं।
सहकर्मियों के साथ, ग्राहकों के साथ, पार्टनर्स के साथ भरोसे और आपसी सम्मान पर टिके रिश्ते बनाने की कोशिश करें, जैसे डेल ने सप्लायर्स के साथ किया।
दूसरी बात, जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो, खासकर जहां सही गलत का सवाल हो, तो एक पल रोकें, अपने मूल्यों के बारे में सोचें।
क्या हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं कर रहे?
बिल्कुल। क्या हम वो कर रहे हैं जो असल में सही है?
बिल्कुल।
और तीसरी बात, लगातार सीखते रहना, बदलते रहना।
हाँ, डेल ने अपनी कंपनी को कितनी बार बदला।
हमें भी अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी, बदलाव से घबराना नहीं है। डेल की वो जो जिज्ञासा थी ना, और बदलने की क्षमता, वो सीखने लायक है।
मेरे लिए इस पूरी कहानी में जो सबसे असरदार बात रही वो है डेल का जोखिम लेने का साहस।
हाँ, बिल्कुल।
चाहे वो डायरेक्ट मॉडल शुरू करना हो, या कंपनी को प्राइवेट करना, या फिर ईएमसी जैसा इतना बड़ा अधिग्रहण।
और ये सब करते हुए अपनी उस प्ले नाइस बट विन वाली सोच पर टिके रहना।
हाँ, ये दिखाता है कि आप सिद्धांतों पे टिके रहकर भी बड़े और साहसिक काम कर सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे शायद यही है कि अच्छा व्यवहार करना, मतलब नैतिक होना, दूसरों का सहयोग करना, सम्मान देना, ये कोई कमजोरी नहीं है,
बल्कि ये एक ताकत है।
हाँ, एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी रणनीति भी हो सकती है। ये सोच जो है ना, ये पारंपरिक बिजनेस की समझ से काफी अलग है, ताजगी भरी है।
बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ, सोचने के लिए।
आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए, नतीजों का इतना दबाव है, क्या लंबी अवधि की सोच रखना और अपने मूल्यों पर, अपने उसूलों पर टिके रहना वाकई सबके लिए मुमकिन है?
यही सिर्फ माइकल डेल जैसे बड़े और कामयाब लोगों के लिए संभव है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।